शब्द अनुवाद क्षुद्रम घास चरम चढ़ते हुए सुमनसाम सुंदर फूलों के उद्यान की शरणे रक्षा में मिथित्वा मैथुन करते हुए रक्तम अनुरक्त शत अंग्री शतपद या भौरों का शतपद या भौरों का घन समूह साम हसू गाने के प्रति लुब्धकर्णम जिसके कान आकृष्ट है अग्रे सामने वृकान भेदिये असु नृपः दूसरों को खाकर जीने वाले अविगनय्यः अपेक्षा करके यांतम जाते हुए पृष्ठे पीछे मृगम हिरण को मृगय ढूंढो लुब्धक शिकारी के बाण बाणों से भिन्नम भेदे जाने वाला अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हे राजा नारद और राजा प्राचीन बाढ़ी का संवाद चलते हैं हे राजा उस हिरण की खोज करो जो एक सुंदर उद्यान में अपनी पत्नी सहित घास चरने में मस्त है वह हिरण अपने कार्य चरने में अत्यधिक अनुरक्त है और उस उद्यान के भौरों के मधुर गुंजार का आनंद ले रहा है उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करो उसे इसका पता ही नहीं कि उसके सामने भेड़ियां हैं जो अन्यों के मांस को खाकर अपना पेट पालन करता है हिरण के पीछे शिकारी है जो उसे तीक्ष्ण बाणों से भेदने के लिए उद्यत है इस प्रकार हिरण की मृत्यु सन्निकट है तात्पर्य यहां एक रूपक अनुयोक्ति है जिसमें राजा से भयानक स्थिति में रह रहे हिरण को दुन्ने निकालने के लिए कहा जाता है यद्यपि वह चारों ओर से संकट से घिरा है किंतु वह सुंदर उद्यान में घास चढ़ता रहता है वह चारों ओर से संकट से बेसुध है सभी जीव विशेषतया मनुष्य अपने को परिवार के बीच अत्यंत सुखी मानते हैं मानो किसी उद्यान में बोरों की मधुर गुंजार सुनते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार की शोभा अपनी पत्नी में केंद्रित माने बोरों की गुंजार की तुलना बच्चों की बोली से की जा सकती है मनुष्य हिरण के ही समान यह जाने बिना कि उसके समक्ष काल रूपी भेड़िया खड़ा है अपने अपने परिवार का भोग करता रहता है जीव के सकाम कर्म उसके लिए एक अन्य घातक स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं और उससे विभिन्न देह धारण करने के लिए बाध्य करते हैं हिरण के लिए मरुस्थल में मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना कोई असामान्य घटना नहीं है हिरण भी अत्यंत कामी होता है निष्कर्ष यह कि जो हिरण की तरह रहता है वह कालांतर में मृत्यु का शिकार होता है इसलिए वैदिक साहित्य की सलाह है कि हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझने अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझे और मृत्यु आने के पहले ही भक्ति करे। भागवत के अनुसार 11:9-11:29 लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमार्तदम् अनित्यमपीह धीरः तूर्णम् यतेतन पदेदनु मृत्यु यावन् निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वथ स्यात्। अनेक जन्मों के पश्चात हमें यह मनुष्य देह मिलती है, अतः मृत्यु आने के पूर्व हमें भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। मानव जीवन की यही पूर्णता है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत वैराग्य का शिक्षण देते हैं, लेकिन हम सब अनुभव से समझ सकते हैं कि भोग से पूर्ण त्याग करना क्लिष्टकर है, आसान नहीं है। तो वैदिक संस्कृति ऐसे है, वर्णाश्रम धर्म, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम के लिए तैयारी का काल है, जिनके अंदर वेद अध्ययन होना चाहिए। और दुख की बात है कि हम वेद अध्ययन नहीं कर रहे हैं। वेद अध्ययन अगर नहीं हो तो वैदिक समाज का रचना कैसे होंगे? राजाओं का काम ब्राह्मण, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, गाय और ब्राह्मणों का पालन। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण वर्ग वेद, वैदिक साहित्य, वेद मंत्र और उपवेद, वेदांग इत्यादि शिक्षण समाज को देते थे। तो राजकुल उनके रक्षण करते थे। अभी परिस्थिति ऐसे है कि समाज में जो राज चला रहे हैं आधुनिक शैक्षणिक विधान के लिए पुष्टि दे रहे हैं। आधुनिक शैक्षणिक पद्धति किसका पद्धति है? गाय मांस खाने वालों का विधान है। और हिंदुस्तान में जहां वेद अध्ययन सैकड़ों सैकड़ों वर्षों का परंपरा आज तक सुरक्षित रहे, सरकार के नीति के अनुसार दिन से दिन नष्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार यूसीजी, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन करके हैं। आधुनिक शैक्षणिक विधान के लिए सैकड़ों सैकड़ों रुपया का खर्चा कर रहे हैं और वेद विज्ञान के लिए उसके अपेक्षा से जेब में कुछ चिल्लर निकाल के दे रहे हैं। तिरुपति में वेद विश्वविद्यालय चालू किया वेद अध्ययन के लिए। हे चलते हैं, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहा राज्यपाल, क्या नाम था, नाम अभी वर्मा करके थे, मध्य प्रदेश के थे, तो उन्होंने अनुमति दिया। तो एक है वेद विश्वविद्यालय और गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत भाषा, संस्कृत के माध्यम से शिक्षण, प्राचीन शैक्षणिक विषय सुरक्षित है आधुनिक रूप में, प्राचीन रूप में नहीं। गुरु शिष्य परंपरा हम कहते हैं, गुरु के पास जाके तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया। दुख की बात है कि पुरातन परंपरा में भी केवल कंठस्थ करना है मंत्र, और मंत्र का अर्थ के संबंध में कुछ प्रश्न ही नहीं रहा। वेदाध्यायन किया, कर्मकांड में लग जाओ, यही परिस्थिति है। किसके लिए? कमाने के लिए। कर्मकांड में पैसा मिलते हैं। प्रभुपाद एक जगह नहीं, अनेक जगह उन्होंने भागवत सप्ताह जीवन निर्वाह करने के लिए खंडन किया, क्योंकि सैकड़ों ब्राह्मण वेद का कुछ भाग का आवर्तन, आवर्तन विधान आप सब जानते हैं, आवर्तन विधानम कंठस्थ, उसका पाठ करके करके मन में जम जाते हैं, उसको आवर्तनम। आधुनिक शैक्षणिक विधान में आवर्तनम नहीं है, कुछ कंठस्थ नहीं करना है, कंठस्थ करते ही फिर छोड़ देते हैं, परीक्षा में ही कुछ लिखते हैं और उत्तीर्ण हो गया, और बाद में भूल ही जाते हैं, निश्चित ही भूल जाते हैं सब लोग, और फिर क्या होते हैं बाद में कुछ, उसको अंग्रेजी में रिफ्रेशर कोर्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, पुनर्शिक्षण, फिर याद दिलाने के लिए कुछ पढ़ाई करना पड़ते हैं। तो देश के नेता लोग, भारत के नेता लोग वैदिक शिक्षण के लिए कुछ जैसे पुष्टि देना चाहते हैं नहीं दे रहे हैं। आधुनिक हम सब पाश्चात्य बनना चाहते हैं। ये प्रभु जी जो हमारे सामने बैठा है, क्षमा करें, सुबह मैंने उनको कहा कि मैंने यूएसए नागरिकता का त्याग पत्र दिया, 29 साल होने आ गया, बहुत बड़ी चीज है। अरे क्योंकि भारतीय लोग पाश्चात्य देशों से विमुग्ध हो गया, पाश्चात्य देशों का उपासना, न केवल भारत, पूरा चीन के लोग क्या कर रहे हैं, मार्क्सवादी देश है, और जब उनके सांसद बुलाते हैं तो सब सूट और टाई पहन के, गलाबंद पहन के आ जाते हैं, गलाबंद करते हैं, चीन के लोग, पूरा दुनिया पाश्चात्य देशों का अनुकरण करना चाहते हैं और लाना चाहते हैं, यहां भी पाश्चात्य, लेकिन पाश्चात्य देशों के औद्योगिक उन्नति के द्वारा शांतिमय जीवन का सत्यानाश हो चुके हैं पूरे दुनिया में, यही लोग नहीं सोचते हैं। ठीक है, हम भी महानगर में रह रहे हैं प्रचारार्थ, लेकिन हमारा प्रचार क्या है, ग्रामीण जीवन में रहो। प्रभुपाद जी महाराज स्पष्ट कहा, ग्रामीण जीवन ही शांतिमय आदर्श जीवन। भारतीय ग्रामीण जीवन विधान, प्रभुपाद महाराज ने कहा कि ये आदर्श जीवन है, स्पष्ट। कोई राजा नहीं है जो समाज को ये न केवल कहने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पीछे धन शक्ति और सैनिक शक्ति लगाना चाहते हैं। जो आपको करना है करो, और उद्योगपतियों के लिए खूब व्यवस्था दीजिए और पैसे वाला बन जाएंगे। और सामान्य लोग क्या खाएंगे? रोटी और मिर्ची। जो मजदूर है आजकल, जब दाल 100 रुपये किलो हो गया, मेरा याद है दाल 6 रुपये किलो था और हमने सोचा कि यह बहुत महंगा है। कैसे जी रहे हैं? चूहा या कीटाणु की तरह। हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? काकरोच। हिंदी में क्या बोलते हैं? कीट। कीट की तरह रह रहे हैं महानगर में, और लोग सोचते हैं मैं महानगर में रह रहा हूं। और उद्देश्य ही है भोग। तो भोग, ओ श्री श्री राधा रास बिहारी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री श्री गौर निताई की, हरे कृष्ण। भोगना है, खाना ही भोग है। प्रसाद ज्यादा खाना, प्रभुपाद महाराज ने कहा, वो भी भोग है। हम कहते हैं प्रसाद खाओ, लेकिन प्रसाद भी ज्यादा नहीं खाना। हम कोई कोई लोग ज्यादा खा रहे हैं। तो भोग रोकना शत प्रतिशत लगभग असंभव है। कोई कोई जैसे शुकदेव, श्रीमद् भागवत का वक्ता, जन्म लेकर भाग गया उनके व्यासदेव, पिताजी व्यासदेव के घर से। तो ये अद्भुत कथा है, ये अपवाद है, ये सामान्य कथा नहीं है, असामान्य। हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनुकरण, अंधा अनुकरण या महान लोगों के अनुकरण करने से हमारा पतन होगा। उनका शिक्षण था सर्वथा त्यागना है सब कुछ। हरिदास ठाकुर, जरसत थकरम चास चाच, क्या बोल, अलग अलग नाम है हिंदी में, चाच चास, तो जरसा वो पीते थे और जीवन चलाते थे। कुछ नहीं, कौन कर सकते हैं? हमने अभी तक नहीं देखा, सुना, जरूर सुना, सुखदेव, हरिदास ठाकुर और कोई, हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी, गिनती कर लो और भी 100, 200, 400, 1000, 2000, लेकिन ज्यादा मानव समाज के सदस्यों भोजन का त्याग नहीं कर सकते हैं। गीता में भी ऐसे उपदेश है, युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु। तो वैदिक समाज का निर्माण, वैदिक समाज में चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और विभिन्न प्रकार के प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग संन्यास आश्रम के लिए है वास्तव में, जीवन के अंत जब इंद्रिय कार्य नहीं कर सकते हैं, जब ताकत नहीं है शरीर में, बिल्कुल सब कुछ त्यागना चाहिए। और वो त्याग कलयुग में निषेध है, श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण के उपदेश के अनुसार। तो फिर क्या करना है? और हमारे समाज, हमारे संस्था में सन्यासी, युवावस्था में सन्यास आश्रम लेकर प्रचार हेतु कि वैदिक समाज वर्तमान में ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि केवल महाभारत में या रामायण में वैदिक समाज थे, आधुनिक काल में वैदिक समाज का कोई आवश्यकता नहीं है। संघर्ष चलते हैं हमारा, संघर्ष है लोगों का मन का परिवर्तन। मन का परिवर्तन समझाने से भी नहीं होते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, कोई कोई फल है। मनुष्य जीवन एक प्रकार के क्या बोलते हैं, मृग, माया मृग। यहां दृष्टांत दिया, मृग सोचते हैं मैं सुखी हूं। हम भी सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं भारत में, क्या मालूम आधा देश से ज्यादा चले गया। पूरा दुनिया महाभारत अगर थे 5000 साल पहले, प्रभुपाद जी महाराज कहां, तो कहां रहा महाभारत? ये भी भारत दिन से दिन काली नाम मात्र संस्कृति। जब हम कहते हैं, सोचने की बात है, दीनाचार्य संस्कृति क्या है? दीनाचार्य, सुबह जल्दी उठना, जल पीना, स्नान करना, भगवान के आरती में आना, भागवत उपासना, ध्यान, योगाभ्यास, अष्टांग योग, जप, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यही संस्कृति है। नाच गाना ही है, लेकिन केवल नाच गाना नहीं है। अभी यही प्रचार चलते हैं, संस्कृति का अर्थ है नाच गाना। दीनाचार्य संस्कृति नहीं है, गीता पाठ, भागवत पाठ, शास्त्र का अध्ययन, ये संस्कृति नहीं है। ये संस्कृति का रक्षण करना आसान नहीं है, प्रयत्न कर रहे हैं और उचित है, होना चाहिए। आशा है कि एक दिन मन 100% भगवत स्मरण होंगे, लेकिन वो आसान नहीं है। हमारे बहुत सारे विचार आ जाते हैं स्वाभाविक रूप से। कृष्ण भगवान इसके विषय में, चंचल ही मन कृष्ण, अर्जुन ने पूछा, मन चंचल है और वायु से भी, वायु के अपेक्षा से मन और वेगवान, मैं मानता हूं अर्जुन कृष्ण भगवान को कहा। उसका वश, वायु का वश कभी कोई नहीं कर सकते हैं। तो मन का वश में लाना वायु से भी दुष्कर अगर हो तो असंभव है, अर्जुन ने यही कृष्ण भगवान को कहा। कृष्ण भगवान ने कहा बारंबार अभ्यास करना, अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न च गृह्यते। उस अभ्यास अभी चल रहा है भागवत विषय, मंगल आरती आने से, कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, जप, ये साधन है। तो साधकों का कुछ आशा है कि मनुष्य अंत में ही मोक्ष, धर्म सीखना है, फिर लगभग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे, अभी हम उनको कांग्रीगेशनल सामुदायिक सामुदायिक कांग्रीगेशनल शब्द हिंदी में सामुदायिक भक्तों पूरा समाज भक्त थे। अभी पूरा समाज राम राज्य वाल्मीकि रामायण में सब राम के भक्त थे सब। अभी क्यों नहीं बन सकते हैं? अगर शैक्षणिक विधान ऐसे हो तो हम अपने खुद के बच्चा देखते हैं, हम उनको आधुनिक शैक्षणिक विधान में डाल रहे हैं और फिर भक्ति का इच्छा भक्ति करने का इच्छा नहीं रहते हैं। आधुनिक शैक्षणिक विधान में क्या सिखा रहे हैं? भगवान के भक्ति है ही नहीं, धर्म के विषय में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई बोलेंगे मैं एमए बीए पीएचडी हूं तो प्रणाम, और हमारे कोई योग्यता नहीं, हम गया नहीं महाविद्यालय, तुम योग्य नहीं है, अयोग्य। योग्यता पहले ही जो वेद और शास्त्र जानते थे, ऋषि मुनि का अर्थ क्या है? खाली समाज छोड़ के वन में रहते थे, ऐसा नहीं है। जो वेद अध्ययन करते थे और जो कंठस्थ किया, जो जब वेद अध्याय वेद पाठ जब चलते थे तो सब आता था, उनको ऋषि मुनि कहते थे। पहले ही नवद्वीप न्याय शास्त्र का एक केंद्र था, पूरा हिंदुस्तान में चैतन्य महाप्रभु का यही कथा है कि पूरा भारत में ही न्याय शास्त्र सीखने के लिए लोग नवद्वीप जाते थे। तो ये न्याय शास्त्र कहां से उत्पन्न हुआ? वेद। और ये श्रीमद् भागवत वेदांत, वेदांत का अर्थ है वेदों का लक्ष्य, उसके विषय है, वेदों का हेतु मोक्ष। अगर मोक्ष नहीं हो लोगों के जीवन में तो पशु तुल्य जीवन का गिनती है। बड़ी बड़ी बंगलों बना रहे हैं, पहले इस देश में बड़ी बड़ी बंगलों में कौन रहते थे? कोई नहीं। संयुक्त परिवार थे, सरल भवनों में रहते थे, कोटि कोटि करोड़ों के रुपया का खर्चा रहने में लोग नहीं करते थे, और 50-100 लोग साथ में भोजन करते थे, 50-60 एक एक कुटुंब में। और कुटुंब परंपरा ऐसे थे, जल्दी उठो, जल्दी स्नान करो, पानी पियो, गो दोहन, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण, गो सेवा। सबसे पहले स्नान करने के पहले 3 बजे उठ के गौशाला में जाके दूध निकालो, गाय का कष्ट न हो। अभी गाय देखना महानगर में नहीं मिलते हैं, और विदेशी उनका निंदा कि तुम्हारे नगरों में गाय इधर उधर घूमते हैं। गाय का दुरावस्था है ही नगरों में, क्योंकि गाय का स्वाभाविक भगवान श्री कृष्ण गोचर गोपालों और गोप बालकों के साथ कहां जाते? नगरों के बीच में नहीं जाते थे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद कृष्ण भगवान के बाल लीला का वर्णन में कहां जाते थे? द्वादश वन, 12 वन थे। कोई कोई लोग ये सब वनों का कंठस्थिक, बहुला वन, वृंदावन, लोहा वन, महावन। तो कृष्ण भगवान जंगल में गाय का स्वभाव है, गाय को चरना चाहिए, कसरत मिलना चाहिए। अभी हमारे कसरत के बारे में बहुत सारे योग अभ्यास, अनुलोम विलोम ये वो सब सीख गए हैं। आसान अष्टांग योग क्या है, यम नियम आसान प्राणायाम, यम नियम आसान प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि प्रत्याहार। तो यही सब के बारे में गायों का व्यायाम नहीं होना चाहिए, और जब गाय लेके जाते थे व्यायाम नहीं होते थे। सोचने की बात है। शासन इस राजनीतिक नेता लोग गुस्सा हो गया कि योगी राजनीतिक क्षेत्र में आया, क्यों आया, तुम्हारा काम नहीं है लोगों को योग सिखाओ। प्रभुपाद इनकार किया क्योंकि आप, हम सब पूरा देश ने देख लिया क्या हो गया। सोते सोते ये अश्वत्थामा जैसे काम चालू किया। अश्वत्थामा ज्यादा क्रूर थे ही, महाभारत में जो पढ़ते हैं अश्वत्थामा के अंदर शंकर भगवान प्रवेश किया ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि शंकर भगवान विनाश का आदि देवता है। और पांडवों के पांच पुत्र और सैकड़ा सैकड़ा जो युद्ध में बच गया अश्वत्थामा ने मार डाला, पांच पांडव बच गया। और परीक्षित भगवान कृष्ण के दया से उनके मां के गर्भ में जाकर परमात्मा के रूप में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाया। अद्भुत कथा। तो शासन अगर क्रूर हो तो अश्वत्थामा की तरह अभी चलते हैं विदेश में। ये आजकल के समाचार अरबिस्तान में क्या हो रहा है, अपना खुद के नागरिकों को भेजो यमलोक। राम राज्य में ये जो राक्षस है उनको मारना है, जो आतताई जो है उनको मार सकते हैं, और सामान्य बुद्धे बच्चे स्त्री उनको मारना वैदिक संस्कृति में इनकार है। महाभारत के युग क्षेत्र में पूरे दुनिया के लोग आया युद्ध करने के लिए, लेकिन एक स्त्री रणभूमि में एक स्त्री का गिनती नहीं है, बुद्धे का गिनती है भीष्म पितामह। छोटे छोटे बच्चे नहीं है, रात को उन्होंने बम फेंका और इतने स्त्री मर गया, इतने बच्चे मर गया। महाभारत के कथा में नहीं, रामायण कथा में है। लंका जब जला दिए तो सबका संकट हो ही गया, लेकिन नियम ये थे। तो राक्षस कुछ भी कर सकते हैं, रात को स्त्रियों पर बच्चों पर बुड्ढों पर आक्रमण करो। वैदिक संस्कृति नहीं मानते हैं, वेद नहीं मानते। कोई कोई लोग कहते हैं कि रावण ब्राह्मण थे, उनके पिताजी ऋषि, क्या नाम था, विश्रवा, कुबेर का भाई, राइट, कुबेर का भाई। लेकिन वैदिक संस्कृति का पालन नहीं करते थे रावण, इसलिए रावण का विनाश, इसलिए रावण का लंका का विनाश, वैदिक संस्कृति का विरोधी। तो ऐसे राक्षसों का इतिहास लंबी है, हजारों लाखों वर्ष पहले वाल्मीकि रामायण का काल थे, ये आधुनिक काल की बात नहीं है। चलते आ रहे हैं परंपरा। राक्षसों का दमन के लिए राम जैसे राजा होना चाहिए और निर्दोष नागरिकों का सुरक्षा के लिए राम जैसे राजा चाहिए। वर्णाश्रम धर्म का पुनर्स्थापना करना प्रभुपाद महाराज का स्पष्ट उपदेश है और गुरुजन भी चाहिए। गुरुजन का अर्थ है शिक्षित है और शिक्षा दे रहे हैं, और एक गुरु नहीं है, अनेक। समाज का गुरु ब्राह्मण है जिन्होंने वेदाध्ययन, वेदांग, उपवेद इत्यादि किया, और सबको खाना है तो खेत, अभी खेती में यंत्र लगाया तो सारे खेतों का मजदूर भाग के यहां बसने लगा, बॉम्बे, दिल्ली, सारे महानगर में कोई मजदूर का जरूरत नहीं खेत में। शुद्ध वायु मिलते थे खेत में, शुद्ध जल, यही उद्योगों के दायरे से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भयंकर रोग का विस्तार। प्रभुपाद महाराज कहते थे कि आधुनिक समाज का प्रगति यही है कि लाखों के लोगों के मृत्यु एक क्षण में करने के लिए क्षमता प्राप्त किया, अनुबम। और नया नया अनुबम अभी तक इस्तेमाल बहुत लंबा 65 साल से नहीं हुआ, उसका अर्थ नहीं है कि नहीं होंगे भविष्य में। प्रभुपाद ने कहा कि बनाया उसका प्रयोग होंगे, कब होंगे कोई कह नहीं सकते। अभी तक कैसे भी दमन हो रहा है, अनुशक्ति का दुरुपयोग। एक दिन के अंदर ये पूरा चित्र का परिवर्तन हो सकते हैं, एक दिन में। तो मनुष्य जीवन के सामने बहुत सारे खतरा है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, सामान्य खतरा। जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, कब होने वाले हैं कोई कह नहीं सकते। और कोई भौतिकवादी व्यक्ति जो अनाचारी है, पापाचारी है, दुराचारी है, वो भी 100 साल तक जीते रहते हैं, और कोई साधु पुरुष युवावस्था में देह त्याग कर सकते हैं, कोई कह नहीं सकते। चैतन्य महाप्रभु 48 वर्ष तक रहा, आदि शंकराचार्य 32 वर्ष, वल्लभाचार्य 48 वर्ष, ऐसे कुछ कहानी है। देह त्यागना निश्चित है, उसके पहले तैयारी, मनुष्य जीवन में अवसर होते हैं। पशु के योनि में प्रश्न ही नहीं है, पशु केवल खाना पीना सोने के पीछे है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, हम देख रहे हैं, हमने अभी तक नहीं देखा कि कुत्ता सब इकट्ठा होकर शास्त्र का अध्ययन, शास्त्र का चर्चा, भुकते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, और खाने के लिए गाय को पूजते हैं, लेकिन गाय भी पशु है। गाय का पूजा इसलिए होते हैं, घी प्राप्त कर सकते हैं गाय का दूध से, और घी से यज्ञ का अनुष्ठान होते हैं, दूध भी पौष्टिक है। आजकल सबको चाय, ब्राह्मण यज्ञ के बीच में भी चाय पीना है, दूध नहीं, इतना बुद्धि भ्रष्ट हो गया वर्तमान काल के लोग, दूध नहीं पिएगा चाय चाय। विद्वान वेद विद्वान ब्राह्मण चाय या कॉफी, दुख की बात है। तो नारद मुनि राजा प्राचीन बरही को मोक्ष का मार्ग दिखाना चाहता था, ये वृतांत चल रहा है। श्रीमद् भागवत का बल मोक्ष पर दे रहे हैं, लेकिन धर्म अर्थ और काम का शिक्षण भी है, ऐसा नहीं है। समाज का परिवर्तन करना हमारे प्रयास चलते हैं। पुस्तक वितरण हम बोलते रहते, पुस्तक के अंदर क्या है? वैदिक समाज का रचना होना चाहिए। और वैदिक समाज क्या है? आधुनिक शैक्षणिक विधान के द्वारा कैसे ही वैदिक समाज का रचना होंगे, ये मेरा प्रश्न है। नहीं हो सकते हैं। स्वयं आजकल वैज्ञानिक लोग जो भौतिकवादी विचारों के नायक है, वो भी नैसर्गिक कृषि के लिए विचार और प्रयोग में लगे हुए हैं। इतना कृत्रिम रसायन डाला खेतों में कि अभी उत्पादन पहले जैसे नहीं, क्योंकि भूमि उसके द्वारा जो भूमि के अंदर पौष्टिक धातु है वो उसका सत्यानाश किया और कर रहे हैं। तो प्राचीन इस देश में ये सब चीज नहीं थे। अभी पिछले आजादी के बाद कहते हुए आजादी, हम कहते हैं गुलामी चालू है अलग रूप में, राजनीतिक रूप में नहीं, विचार के रूप में गुलामी चलते हैं। विचार, संस्कृति, जीवन शैली गुलामी चलते हैं ज्यादा। आजादी प्राप्त करने के बाद गुलामी ज्यादा चलते हैं, दुख की बात है। पहले ही आजादी कहते हुए, आजादी के पहले ही कृषि कार्य प्राचीन विधान से होते थे। ये जंतुनाशक रसायन का प्रयोग नहीं होते थे, और कहते हुए पौष्टिक रसायन का प्रयोग नहीं होते थे। खाद गोबर से बनते थे ज्यादातर, और पत्ते और कोई भी नैसर्गिक जो कचरे हैं जो स्वयं बिगड़ जाते हैं, गोबर के साथ मिलाकर कालांतर में खाद बन जाते थे। और अभी बड़ी बड़ी कारखाना के जो उत्पादन जमीन में डाल डाल के जमीन अनुपयोगी हो जाते हैं। तो अभी फिर से ही प्राचीन विधान की ओर कुछ विचार चलते हैं। प्रीतु महाराज का कहानी इसके पहले थे कि इसके पश्चात है, अभी याद नहीं आ रहे हैं, इसके पहले। तो प्रीतु महाराज के कहानी में ही उन्होंने ही भूमि से ही कैसे ही उत्पादन किया उसका संक्षेप वर्णन होते हैं। और ये सब उत्पादन से ही अन्नाद भवंती भूतानी, अन्न और शाक फल ये सब चीज सात्विक पौष्टिक चीज मानव समाज के लिए आवश्यकता है और ये औद्योगिक वस्तु मानव समाज का हानि पहुंच मानव समाज को हानि पहुंचा रहे हैं। लेकिन व्यापक रूप से विचार का प्रदूषण, विचार प्रदूषण व्यापक रूप से, विपरीत शिक्षण, कृत्रिम पदार्थों के पुष्टि, सरकार न केवल भारत सरकार, पूरे दुनिया के सरकार आर्थिक सहायता दे रहे हैं। हरे कृष्ण। काल ये संकेत है कि 10 मिनट प्रश्न के लिए बाकी है, अगर कोई प्रश्न हो तो। हाँ, हरे कृष्ण।
आपने कहा प्रभुपाद जी कहते थे कि अधिक प्रसाद लेने का भी भोग माना जाता है। मैंने सुना है कि कृष्ण प्रसाद और कृष्ण भगवान में अंतर नहीं है। समझिए कि देह त्याग करने के समय कृष्ण प्रसाद का याद आता है, वो भगवत धाम जाएगा कि नहीं जाएगा?
गीता में एक श्लोक है, वासुदेव सर्वम इति सब महात्मा सुदुर्लभ। सब कुछ वासुदेव है लेकिन तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण युक्त आहार विहारश्च युक्त कर्म, ये सब उपदेश कृष्ण भगवान ने दिया। वासुदेव सर्वमिति कृष्ण भगवान ने दिया। हम वासुदेव नहीं है, हम भौतिक संसार में गिरे हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आई नंद तनुज पतितम माम, मैं पतित हूं। अगर चैतन्य महाप्रभु ऐसे प्रार्थना किया मैं पतित हूं तो फिर हमारा परिस्थिति क्या है? तो आरंभ में अगर कोई अज्ञानी हो, प्रसाद देने से मन पवित्र हो जाते हैं। बाद में जब भक्त बन गया और अगर ज्यादा प्रसाद खाते रहेंगे तो उनके लिए हानिकारक है, भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। संतुष्ट नहीं है?
हानिकारक है, मैं आई एग्री, हानिकारक है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि कृष्ण प्रसाद का याद करता है तो भगवत धाम जाता कि नहीं?
भगवान
भगवत धाम जाता है कि नहीं?
भगवान कृष्ण प्रसाद का याद, क्योंकि कृष्ण से अभिन्न है ना, कैसे बोल सकते हैं? लेकिन ऐसे ही उपदेश दिया प्रभुपाद, कृष्ण प्रसाद में कृष्ण भगवान प्रवेश करते हैं, उनका झूठा होने से उनके अभिन्न। सबको प्रसाद खाना है, एक एक मंदिर में प्रसाद के पीछे पागल है, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, पूर्व जगन्नाथ, पश्चिम द्वारकाधीश, तिरुपति बालाजी, वृंदावन, मालूम नहीं, सब लोग प्रसाद लेना चाहते हैं। तो प्रसाद मात्रा में ले सकते भी है, ज्यादा प्रसाद खाने से बीमार पड़ जाएगा ये भी निश्चित है। दो तीन और प्रश्न, एक पीछे एक बाजू में, बाद में पीछे।
इट वॉज एक्चुअली व्हाट इफ he's thinking of prasadam as Prabhuji is saying, but he's thinking of prasadam to satisfy his tongue, that is the jibha, jibha ko prasan karne ke liye wo prasad ki yaad aa rahe hai, to isko indriya tripti kehte hai na।
agar koi प्रसाद का स्मरण करते हैं, बट प्रसाद क्या है भगवान को नहीं दे सकते, दिया हुआ है। जैसे वो ब्राह्मण जो भक्ति रसामृत सिंधु ध्यान कर रहे थे और उसने भगवान के लिए लेकिन पका रहे थे, प्रसाद नहीं था, भोग बना रहे थे भगवान को देने के लिए, फिर हाथ जल गया उसके ध्यान में और उठ के देखा हाथ जला हुआ था। ऐसे ही ध्यान होना चाहिए प्रसाद में भी भगवान के संबंध में। ये जवाब देना इसमें इतना आसान नहीं है। हाँ, एक और प्रश्न।
प्रभु जी, यू सेड दैट 500 इयर्स बिफोर द नवद्वीप वाज द प्लेस ऑफ लर्निंग
फॉर न्याय शास्त्र।
या सो आई मीन इन वेरी फ्यू आई मीन वर्ड्स यू कैन एक्सप्लेन न्याय।
न्याय शास्त्र दैट इज logic means originally it was inspired by study of Vedas, that there is a philosophy of karma, siddhantam is there, and how to understand things that is taught. That I had memorized that actually beginning of that, but now it's also I'm not remembering. You have to do it every day, at least the first chapter or part of the first chapter, because the different types of logic are taught in Nyaya Sutras of Gautama. So that how to prove that something is true, Anuman. शब्द प्रत्यक्ष अनुमान उपमानम शब्द चल जल्प व्हाट्स दैट अदर वन
पत्ति अर्थपत्ति
अर्थपत्ति नो देयर इज अनदर समथिंग आभास हेतुवाभास हेतुवाभास फॉल्स लॉजिक एंड सो मेनी पीपल गिव दैट फॉल्स लॉजिक टू कॉम्बैट एथियिज्म न्याय शास्त्र वॉज स्टडीड टू डिफीट चार्वकस न्याय शास्त्र बट इट वॉज न्याय शास्त्र एक्सेप्ट वेदस एज शब्द सो ऑल द Shad Darshanas, six systems of philosophy that came out of Vedas, accept Vedas as Pramanam. And Charvakas, they don't accept Vedas and they don't accept any type of Vidhanam, any system. Jainas and Buddhists have some system, but they reject Vedas. So there were 9 philosophies. Six were Vedic and 3 were Avaidic. So Vedanta philosophy we are following. Uttara Mimamsa. Purva Mimamsa is Karmakand type of logic. Nyaya was logic. Vaisheshika is also logic. Sankhya is another type of logic. And yoga is not logic as such, but one of the philosophies that is a meditation philosophy, dhyanam, that's also based on Vedas. It's not rejected as such. Only that traditional nyayayikas and Vaisheshikas, they were impersonalists. They were somewhat impersonalists. Purva Mimamsa followers could be impersonalists also. Although they were followers of Vyas, Jaimini, is a follower of Vyasa, so how could he be an impersonalist? But the other ones were not followers of Vyasa. So some impersonalism, but impersonalism in a pure form leads to moksha. Brahmavada leads to moksha. But that's Sayujya Mukti, not Salokya Sarshti, Samipya, Sarupya Moksha. Like that. First Vedic system was accepted by great sages. Okay? Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna.